ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज नुमा श्याम के इस सुंदर वेला में हम बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे, संस्कारों के शुद्धिकरण की विधि। प्यारे बाबा की 31 दिसंबर की जो मुरली हम सब ने सुनी, तो उसमें बाबा ने पूछा कि क्या सिर्फ साल को विदाई दी या पुराने संस्कारों को भी विदाई दी। फिर बाबा ने कहा कि साल को विदाई देना तो बहुत सहज है, पर पुराने संस्कारों को विदाई देना भी इतना ही सहज है क्या? और बाबा ने कहा उसके लिए दो धारणाएं बहुत मजबूत चाहिए, एक परिवर्तन शक्ति और दूसरी दृढ़ता की शक्ति। अब हम देखेंगे कि संस्कार बनते कैसे हैं। पहले दिन जब हम 7 डेज कोर्स करते हैं तो उसमें हमको मन बुद्धि संस्कार का परिचय मिलता है। मन और बुद्धि मिलकर के जो भी कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, लेकिन वो संस्कार दृढ़ कैसे होता है? जब हम बार बार किसी कर्म को रिपीट करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में रिपीट करते हैं, तो वो हमारी पक्की आदत, पक्का संस्कार बन जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे। सुबह सुबह उठ करके हम वॉश बेसिन में हाथ धोते, हर रोज धोते। एक दिन हमने देखा कि वॉश बेसिन में पानी नहीं है, तो हमने मटके में से पानी का गिलास लिया और हाथ धुलाई कर ली सुबह सुबह। फिर जब नाश्ते का समय हुआ तो हम फिर वॉश बेसिन पे पहुंच गए, जबकि सुबह हमको पता पड़ गया था कि वॉश बेसिन में पानी नहीं है और 2-3 दिन पानी आने वाला भी नहीं है। लेकिन हम एक स्वतः संचालित प्रक्रिया के अधीन वहीं पहुंच जाते हैं। दोपहर में भी पहुंच जाएंगे, शाम को भी पहुंच जाएंगे। तो ज्ञान होने के बावजूद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संस्कार इतना पक्का हो गया है कि ज्ञान तो उसके नीचे दब जाता है और संस्कार ज्ञान पर हावी हो जाता है। तो जानते हुए भी हमसे बार बार वो कर्म रिपीट होता है। कोई बुरी आदत हो, मान लो किसी को किसी व्यसन की लत लग गई, अब उसको ज्ञान तो है कि ये व्यसन बहुत खराब है, लेकिन संस्कार ज्ञान को दबा देता है और संस्कार हावी हो जाता है। तो बार बार किसी भी कर्म को करने से वो बहुत पक्की आदत बन जाती है। जैसे हमने मैगजीन में एक बार एक छोटा सा दृष्टांत डाला था कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में गया और रास्ता भटक गया, फिर उसने दूर एक महल देखा और उसमें थोड़ी सी रोशनी भी देखी, तो वो चलता चलता वहीं पहुंच गया, द्वार खटखटाया, अंदर से एक महिला निकली। इस व्यक्ति ने कहा मुझे रात को शरण दे दो, सुबह मैं उठ के चला जाऊंगा। महिला ने कहा आइए। अंदर गया तो बड़ी भोजन की खुशबू थी, बड़ा अच्छा बिस्तर मिला, तो उसका मन वहां लग गया। उस महिला ने कहा आपका मन यहां लगता है तो आप यहां रह सकते हो, बस मैं एक छोटा सा काम करूंगी कि तुम्हारे चारों ओर एक पतला धागा रोज लपेटूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति को सब सुविधाएं मिल गई और 6 महीने उसको रहते रहते हो गए। एक दिन सपने में उसे अपनी मदर की याद आई, तो उसने उस महिला को कहा कि मुझे घर जाना है। लेकिन उसके चारों ओर 6 महीने से जो पतला धागा बांधा जा रहा था, अब वो इतनी मोटी रस्सी बन गया था कि वो व्यक्ति अपने आप को उससे छुड़ा ही नहीं पाया। और बाद में उसे पता चला कि ये तो कोई डायन है जो मनुष्यों को अपने में फंसा लेती है। तो कोई भी आदत वास्तव में डायन ही है, जो हमारे पांव की सांकल बन जाती है, जो हमें बंधन में बांध लेती है, फंसा लेती है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि धागों से बना रस्सा तोड़ना मुश्किल और आदत जो बन जाए उसको छोड़ना मुश्किल। तो बार बार एक ही कर्म को रिपीट करेंगे तो वो मोटे रस्से की तरह से पकी हुई आदत बन जाएगी। अब ये जो संस्कार है, बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मुख्य तौर पे हमारे 4 प्रकार के संस्कार पूरे कल्प में। एक तो अनादि संस्कार है, आत्मा के मूल संस्कार, वो हमारे साथ है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। परम धाम से इनको वो लेकर के आती है। दूसरे संस्कार हैं आदिकाल के, सतयुगी संस्कार, देवताई संस्कार, दिव्य गुणों के संस्कार, हर्षित मुक्ता, सत्यता, पवित्रता, दिव्यता, ये हमारे देवताई संस्कार। द्वापर कलयुग के जो संस्कार हैं वो हमारे नहीं है, वो रावण के हैं, उन्हें हम कहते हैं मध्य के संस्कार। और वर्तमान संगम युग के जो संस्कार हैं वो ईश्वरीय संस्कार, जो बाप के संस्कार, वो हम बच्चों के संस्कार। बाप विश्व कल्याणकारी, हम मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाप विश्व परिवर्तक, हम मास्टर विश्व परिवर्तक। बाप सर्वशक्तिवान, हम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो वास्तव में अभी हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जो मूल संस्कार हैं, हमारे जो आदि संस्कार हैं, वो फिर से हमारे कर्मों में इमर्ज हों, और जो मध्यकाल के संस्कार हैं वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएं, हमारे सेवक बन जाएं, हमारे दास बन करके हमको सहयोग दें। जैसे भक्ति मार्ग में विष्णु जी का चित्र दिखाते हैं, शेष शैया के ऊपर लेते हैं और पांचों नागों ने उनके ऊपर छत्र छाया की हुई है और बहुत हर्षित है। तो वास्तव में जितने भी विकार हैं उनको दबाना नहीं है, उनको मारना भी नहीं है, उनको परिवर्तित करके अपना सहयोगी बनाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो विजयी होता है वो हारे हुए राजा का रूप बदल देता है। हारा हुआ राजा प्रजा बन जाता है, हारा हुआ मंत्री भी साधारण व्यक्ति बन जाता है। तो तुम जब जीत जाते हो तो इन विकारों का रूप परिवर्तित करो, इनको दबाओगे तो कहते हैं दबी हुई चीज तो फिर कई गुना शक्ति से प्रकट हो जाती है। इनको परिवर्तित करके सहयोगी बना लेते हैं तो 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व दसों हमारे सहयोगी बन जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं माया जीत, जगत जीत। और यही सच्चा दशहरा है। 5 विकार भी जीत लिए हमने और 5 प्रकृति के तत्व भी जीत लिए। तो इन 5 विकारों को किस तरीके से परिवर्तित करना है उसको जानने से पहले हम संस्कारों के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। मेरे भीतर कौन सा संस्कार है, मुझे कैसे पता पड़े? तो जो संस्कार की स्मेल है वो हमारे संकल्प, इसलिए हम सब ऊपर से देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे संस्कार अलग अलग हैं, हमारे संकल्प अलग अलग हैं। एक ही वस्तु को तीन लोग देखते हैं, लेकिन तीनों के संकल्प उसके बारे में अलग अलग चलते हैं। जैसे एक गाय है, रास्ते में खड़ी है और तीन लोग जा रही हैं, तीनों की दृष्टि गाय पर पड़ती है, लेकिन पहला व्यक्ति गाय को देख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, गौ माता प्रणाम, क्योंकि वो समझता है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसका परिवार ऐसा है, उसके घर में गाय की पूजा होती है, तो वो प्रणाम करता है। दूसरा व्यक्ति भी गाय को देखता है, लेकिन उसके मन में संकल्प आता है कि ये गाय तो बड़ी दूध वाली है और मेरे घर में दूध की बड़ी जरूरत है, मालिक कहीं मिल जाए तो मैं उससे गाय खरीद लूं। ये दूसरे व्यक्ति ने संकल्प किया गाय को देख के। और जो तीसरा व्यक्ति है वो गाय को देख के सोच रहा है कि अगर मैं इस गाय को अभी भगा लूं और किसी कसाई को बेच दूं तो अभी अभी हाथों हाथ मुझे 10-15 हजार रुपया मिल जाए। तो गाय तो एक ही है, लेकिन तीनों लोगों के तीन प्रकार के संकल्प क्यों है? क्योंकि उनके संस्कार वैसे, संकल्प तो भीतर से आता है, संस्कार भी भीतर है। तो पहले व्यक्ति के संस्कार हम कहेंगे सतोगुणी, दूसरे के कहेंगे रजोगुणी और तीसरे के कहेंगे तमोगुणी। कई बार जैसे हम कहते हैं कि जी वातावरण ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, लोग ऐसे थे इसलिए ऐसा हो गया, वास्तव में वातावरण और लोगों से अधिक प्रभाव हमारे आंतरिक संस्कारों का होता है। अगर हमारे संस्कार पॉजिटिव हैं, सतोगुणी हैं, तो बाहर का वातावरण और व्यक्ति कैसे भी हो, हमारे अंदर सतोगुणी संकल्प ही इमर्ज होंगे। जैसे अपन कई बार बाजार में जाते हैं और सामने एक गोदाम है, हमें नहीं पता गोदाम के अंदर क्या है, गोदाम को तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जब पास से गुजरते हैं तो स्मेल आती है किरोसिन की, तो हम समझ जाते हैं गोदाम के अंदर किरोसिन भरा हुआ है। थोड़ा आगे गए तो एक और गोदाम आया, हमें नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन बाजू से गुजरे तो चंदन की खुशबू आई, हमको समझ में आ गया इस गोदाम में चंदन भरा हुआ। तो बंद ताला होते हुए भी स्मेल तो बाहर फैलती ही है ना, तो संस्कार अंदर स्टोर में है, गुप्त है, लेकिन संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में उन संस्कारों की जो स्मेल है वो फैलती रहती है, एक दो को स्पर्श करती है, एक दो को अनुभव भी होती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर कोई नेगेटिव संस्कार, लंबे समय से वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। मान लो किसी में क्रोधी है, वो बेचारा बहुत परेशान है कि ये निकल जाए निकल जाए, बहुत कोशिश करता है लेकिन वो निकलता ही नहीं, कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। तो उसको निकालने की विधि क्या है? जैसे मान लो हमारा डाइनिंग टेबल है और उसके ऊपर हमने एक फलों का टोकरा रखा है, उसमें 20 प्रकार के फल है। अब जब आते हैं डाइनिंग में तो बड़ी खुशबू आती है, लेकिन एक दिन हमको खुशबू नहीं, स्मेल आई वो भी बुरी, और हम पहचान भी गए ये अमरूद है, ये टोकरे में सड़ रहा है। 19 फल अच्छे थे, केवल एक ही फल सड़ा था, लेकिन एक सड़े हुए फल ने क्या किया, 19 फलों की खुशबू को दबा दिया। अब देखो, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत कार्य कुशल हैं, बहुत रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, बस हमारे में क्रोध है, बाकी तो बहुत अच्छे गुण है ना, लेकिन ये क्रोध क्या करता है, बाकी सारे अच्छे गुणों को दबा देता है। कोई कोई हमारे बारे में बोलेगा, अरे थोड़ा क्रोध करता है, इसे थोड़ा दूर ही रहना, इसे थोड़ा बच के ही रहना। तो एक बुराई में कितनी ताकत है, 19 अच्छाइयों को दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, उस टोकरे में से उस सड़े हुए अमरूद को निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे। अब 19 फलों की खुशबू फिर अच्छे से आने लगी, पर क्या क्रोध को ऐसे पकड़ा और निकाल के फेंक दिया, इतना सरल है क्या? अमरूद को तो फेंक दिया, वो तो बहुत सरल काम था। तो चाहे कोई भी विकार हो, बाबा ने कहा उसका रूप परिवर्तित करो, ऐसे वो नहीं निकलेगा, उसको अपना सहयोगी बनाओ। इतिहास में एक घटना की चर्चा आती है कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सहयोग से मगध के राजा नंद को बंदी बना लिया और मगध का सम्राट चंद्रगुप्त को घोषित कर दिया, लेकिन पूरी तरह से समस्या समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जो नंद का मंत्री था राक्षस अमात्य, वो अभी भी उनकी पकड़ में नहीं आया था और वो अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहा था कि मैं मगध में चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनने दूंगा। अब चाणक्य चाहता तो अमात्य राक्षस को पकड़ के बंदी बना सकता था, उसको मृत्युदंड दे सकता था, लेकिन चाणक्य जानता था कि बहुत योग्य है। तो जैसे ये नंद की सेवा करता था, ऐसे अगर ये चंद्रगुप्त की भी सेवा करने लगे तो मगध को कितना फायदा होगा, हम योग्य व्यक्ति को दंड क्यों दें? उसकी वफादारी परिवर्तित करें। और चाणक्य इसमें सफल भी हो गया, अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य बन गया और चंद्रगुप्त बिल्कुल निर्विघ्न हो गया। तो ऐसे ही ये जितने भी विकार हैं, इनको बंदी नहीं बनाना, इनको दबाना नहीं, लेकिन इनका शुद्धिकरण करना है। अब ऐसे तो विकार अनगिनत हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम 5 विकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले काम विकार, तो बाबा ने कहा इसका रूप बदलो। कैसे बदलो? काम विकार को शुभ भावना में बदलो और आत्मिक भावना में बदलो। शुभ भावना किसे कहते हैं? शुभ भावना में मोटे तौर पे 5 भावनाएं हैं। पहली, हर एक आत्मा के कल्याण की भावना। हर एक आत्मा के कल्याण की भावना, चाहे वो कैसा भी है, उसने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया, कैसे भी बोल बोले, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, मैं कल्याणकारी हूं तो मेरा काम कल्याण करना है। देखो, मिश्री को नीम के पत्तों में लपेट दो फिर भी वो मीठी ही रहेगी, क्योंकि उसका मूल गुण मिठास देना है। भक्ति मार्ग में एक दोहा कहते हैं कि चंदन के पेड़ के चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन फिर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, सांप के जहर को ग्रहण नहीं करता। तो मैं सबके प्रति कल्याण की भावना रखूं, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। कहते हैं जो जाते समय भला होता है वो लौटते समय लाभ बन जाता है। तो किसी का भला सोचना मतलब अपना लाभ करना। दूसरी भावना सबके लिए स्नेह और सहयोग की भावना। स्नेह तो अंदर की भावना है, लेकिन सहयोग तो प्रकट रूप में भी हम देते हैं। किसी की मदद करना, किसी गिरे हुए को उठाना, किसी को हिम्मत के दो बोल बोल देना, तो स्नेह और सहयोग देना। तीसरी है किसी का उमंग उत्साह बढ़ा देना। बाबा ने कहा था, मान लो तुम किसी का उमंग बढ़ाते हो, तुम्हारा अपना उमंग 10% है, पर आपने उसका उमंग बढ़ाया तो आपका बढ़कर के 20 हो जाएगा। दूसरे को उमंग देते हैं तो हमारा उमंग भी बढ़ जाता है। और चौथी है अपनेपन की भावना। सारा विश्व अपना है, हम सब परम धाम में सभी इकट्ठे बैठे थे, बाबा की गोद में बैठे थे, सब भाई भाई थे, तो विश्व की सब आत्माएं मेरे पिता के बच्चे हैं, मेरे घर के रहवासी हैं और मुझ आत्मा के सगे भाई हैं। असली भाई तो सब आत्माएं ही हैं, शरीर के नाते तो 1, 2, 3, 4 बहुत कम होते हैं, लेकिन पिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते सारा विश्व मेरा अपना है। ये है अपनेपन की भावना। और पांचवी है आत्मिक भावना। जिसको भी हम देखें, भ्रकुटि में बैठे डायमंड को देखें, चमकदार ज्योति बिंदु सितारे को देखें, रूहे गुलाब को देखें। दुनिया में एक स्लोगन लिखा होता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो हम ऊंचे लोग हैं तो हमारी पसंद भी ऊंची है, हम भ्रकुटि को ही देखते हैं। किसी के घर में कोई संत महात्मा आता है तो लोग बच्चे की भ्रकुटि ही दिखाते, क्योंकि संतों की नजर भ्रकुटि पे ही जाती है। तो बाबा कहते हैं आप ही तो सच्चे सच्चे संत हो ना, तो आप सबकी भ्रकुटि में उस दिव्य जगमगाते सितारे को देखते हो। तो ये पांच प्रकार की भावनाएं, जब इनको मजबूत करेंगे, दृढ़ करेंगे, तो काम विकार बदल के हमारा सहयोगी बन जाएगा। हमारी तपस्या में, हमारे ब्राह्मण जीवन में हमको आगे बढ़ाने में मददगार बनेगा। दूसरा है क्रोध। बाबा ने कहा क्रोध को सहनशीलता में बदलो और योग अग्नि में बदलो, क्योंकि क्रोध भी तो अग्नि है ना, भीतर को भी जला देती है, बाहर भी जला देती है। भीतर भी तोड़फोड़ होती है क्रोध से, बाहर भी तोड़फोड़ होती है, रिश्तों में दरारें पैदा कर देता है, अपनों को पराया बना देता है, क्रोध यही तो करता है। और जब हम इसे योग अग्नि में बदल देते हैं तो वो योग अग्नि हमारे भीतर भी निर्माण करती है, बाहर भी निर्माण करती है, अपनों की तो बात छोड़ो, परायों को भी अपना बना देती है। तो जितना अंदर में क्रोध का गुब्बार उठे तो उसी समय हम संकल्प करें कि मुझे योग अग्नि से भीतर बाहर परिवर्तन करना है, मुझे योग की निरंतर ऐसी अग्नि जलानी है जिसमें मेरे 63 जन्मों के सब पुराने बुरे पराये संस्कार जल करके भस्म हो जाएं। जब क्रोध आए तो भीतर में यही प्रेरणा पैदा हो कि मुझे सर्वोत्तम योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, एक रस योगी बनना है, और बाबा की जितनी भी शक्तियां हैं वो मेरा वर्षा है, मुझे वो सब शक्तियां अपने भीतर भरनी। तो क्रोध को हम योग अग्नि में परिवर्तित करेंगे और केवल संकल्प ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में इसको करके दिखाएंगे। जिस दिन ज्यादा क्रोध आए उस दिन हम ज्यादा योग अग्नि प्रज्वलित करें, तो एक तरह से वो जो क्रोध है वो हमारे लिए योग की प्रेरणा बन जाएगा। और दूसरा बाबा ने कहा सहनशीलता, सहन करना मतलब आगे बढ़ना, सहन करना मतलब भगवान के दिल पर चढ़ना, सहन करना ही सोने का गहना है। जैसे हम अपना बैज बार बार संभालते हैं ना कि मेरा बैज है कि नहीं, तो ऐसे ही अपनी सहनशीलता को बार बार संभाले, मेरे अंदर सहनशीलता है कि नहीं, गिर तो नहीं गई। क्योंकि वर्तमान समय हमें बहुत कुछ सहन करना होता है, कभी शारीरिक बीमारी का पेपर आता है, कभी प्रकृति का पेपर आता है, कभी किसी व्यक्ति से पेपर आता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो आप बच्चे सहन नहीं करते, ओवरकम करते हो। ओवरकम का मतलब क्या होता है, जैसे सामने कांटे वाली बाढ़ है तो हम उसके ऊपर से छलांग लगा के चले जाते हैं। जैसे पानी क्या करता है, पानी के सामने कोई अवरोध आ गया, चट्टान आ गई, तो पानी उसके साथ टक्कर नहीं खाता, कहीं से भी इधर से मुड़ जाएगा उधर से मुड़ जाएगा, अपना रास्ता निकाल लेगा। तो वास्तव में अपने रास्ते को निकाल लेना, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, पर्वत आ गया तो उड़ती कला से उसको लांग जाओ, अगर कोई जमीनी अवरोध है तो पानी की तरह से तरल बन करके उसको पार कर जाओ, अपने आप को मोल्ड करके उस अवरोध को क्रॉस कर लेना। तो ये तो वास्तव में हमारी एक खूबी है, इसे हम सहना थोड़े कहेंगे, ये तो एक योग्यता है। जैसे दिखाते हैं कि हनुमान जी जब सीता जी की सुधि लेने के लिए लंका जा रहे थे तो उनके सामने भी बहुत पेपर आए। पहला पेपर आया एक सुप्सा नाम की राक्षसी थी, उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता मैं तो आपके सामने प्रस्तुत हूं, और हनुमान जी ने मच्छर जितना रूप बना लिया और उसके कपोल में चक्कर काट के वापस आ गए। बोला मैं तो आपके पेट में चक्कर लगा के वापस आ गया, मोल्ड हो गया, छोटा रूप बना लिया। और आगे जाके एक राक्षस आया कालनेमी, वो बहुत विकराल था, तो हनुमान जी ने उससे भी बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और कालनेमी को कालकल्वित कर दिया। तो कभी सूक्ष्म रूप धारण किया, कभी विकराल रूप धारण किया, पर अपना काम निकाल ली। तो ये है हमारी सहनशीलता कि हम सामने वाले को नहीं बदलते, वो जो मर्जी करे, लेकिन अपने को बदल करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। फिर है लोभ विकार। लोभ को किसमें बदलेंगे, लोभ का मतलब होता है संग्रह, लोभ का मतलब है मुझे मिले, लोभ का मतलब है इकट्ठा करना, अब इसका परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं लोभ को अनासक्ति में बदलो, उपरामता में बदलो, इच्छा मात्रम अविद्या में बदलो, बेहद की वैराग्य वृत्ति में बदलो। लोभी व्यक्ति चीजों को कहता आइए आइए, बाबा कहता आप कहो जाइए जाइए, तो आइए आइए नहीं, जाइए जाइए। देने की भावना, लोभ को दातापन में बदलो। देखो लोभी व्यक्ति के अंदर चीजों का आकर्षण होता है। बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर आकर्षण होना चाहिए कि मैं बाप समान बनूं, बाप के गुणों का आकर्षण, शक्तियों का आकर्षण, बाप के जो चरित्र हैं उनका आकर्षण, मैं अधिक से अधिक गुण इकट्ठे करूं, अधिक से अधिक शक्तियां इकट्ठी करूं, तो ये लोभ विकार परिवर्तित हो जाएगा। और हम कितने मालामाल हो जाएंगे। इसलिए मन में हमेशा बार बार एक संकल्प आए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। योगियों का संकल्प होता है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर, कह गए संत और ज्ञानी। जो चीज सहज मिलती है, दुआओं से मिलती है, वो चीज दूध के बराबर है, और जो चीज मांग मांग करके मिलती है, दे दो ना, वो चीज पानी के बराबर हो जाती है, और जो चीज खींच खींच के मिलती है, या तो सामने वाला तड़फेगा या तो हम तड़फेंगे, खींचा तानी में मिलती है, तो वो खून के बराबर है, उसमें सुख नहीं मिलता। जो चीज सहज मिलती है, मुस्कुराते हुए बिना मांगे मिलती है, वो दूध बराबर, तो हमें वही चीजें चाहिए। और मोह को किसमें बदलेंगे? मोह को बदलेंगे ईश्वर के प्रेम में, क्योंकि मोह में हमें देह के संबंधों से मोह होता है। लेकिन हम जानते हैं कि देह के संबंधों से हमने 63 जन्म मोह किया तो क्या मिला? मनुष्यों का प्रेम हमें कमजोर करता है, भगवान का प्रेम हमें शक्तिशाली बनाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सबकी यादों के दिए बुझा दो। हमारे भीतर में कईयों की यादों के दिए जलते रहे हैं जन्म जन्म, तो बाबा ने कहा उन सब दियों को बुझा दो और केवल एक दिया जलाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हमने मंदिरों में दिए जलाए, घरों में दिए जलाए, लेकिन संगम युग में अपने भीतर में एक परमात्मा की याद का निरंतर दिया जलाना है। दिन हो या रात हो, एक ही दिया जलता है, मैं बाबा का बाबा मेरा, सर्व संबंधों से बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है, सर्व प्राप्तियां मुझे बाबा से है, क्योंकि जो बाबा प्राप्ति कराएगा ऐसा और कोई करा नहीं सकता, और बाबा जो संबंध निभाएगा ऐसा और कोई निभा नहीं सकता। आपने एक राजा की कहानी तो सुनी होगी। एक राजा था, उसका कोई वारिस नहीं था, तो उसके यहाँ एक संत आया। उसने कहा महाराज, वारिस प्राप्त करने की मैं आपको विधि बताता हूँ। राजा इच्छुक तो नहीं था, फिर भी कहा चलो बताओ। उसने कहा तुम प्रजा में से किसी एक बालक की बलि दे दो, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, 3-4 दिन तक तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर एक गरीब माँ बाप अपने बीच वाले बच्चे का हाथ पकड़ के आए, बुला लो राजा इसको अपने पास रखो, और चले गए। बच्चे को तो पता पड़ गया कि मेरी बलि दी जाएगी। संत ने कहा था पहले 15 दिन बच्चे को अपने पास रखना, खूब खिलाना पिलाना, खातरी करना, फिर बलि चढ़ाना। तो राजा ने बच्चे को महल दिखाया, मिठाइयां खिलाने की कोशिश की, कपड़े पहनाने की कोशिश की, नए नए। बच्चे ने सब चीजों के लिए मना कर दिया। फिर राजा ने पूछा अच्छा तुम चाहते क्या हो ये बताओ। बोला मेरे को 6 दिए ला करके दो, तेल ला के दो, बत्ती ला के दो, माचिस ला के दो, और मुझे एकांत में बिठा दो, कोई मुझे देखे नहीं। राजा ने कहा ठीक है। बच्चे को सब कुछ दे दिया गया और एक झरोखे में से राजा देखता रहा। बच्चे को राजा नहीं दिख रहा था, राजा को बच्चा दिख रहा था। तो बच्चे ने पहले एक दिया जलाया, फिर उसको बुझा दिया और तोड़ भी दिया। तेल भी गिर गया, फिर दूसरा दिया जलाया, उसके साथ भी ऐसा ही किया, तीसरा चौथा पांचवा सबके साथ ऐसा ही किया। फिर जब छठा जलाया तो उसको देख देख के मुस्कुराता रहा, गीत गाता रहा, तालियां बजाता रहा, उसकी परिक्रमा देता रहा, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा एकदम उसके सामने आ गए। बच्चे ने कहा, मैंने मना किया था ना राजा, मुझे कोई देखे ना। राजा ने कहा, बेटा मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब तुमको बताना पड़ेगा कि ये पांच दिए कौन और ये छठा दिया कौन। बोला, राजा अब आप पूछ ही रहे हो तो ये पहला दिया मेरी माँ के नाम का, लेकिन माँ तो मुझे मरने के लिए छोड़ गई, मैंने वो दिया बुझा दिया, ऐसी माँ का क्या करूं। दूसरा दिया मेरे पिता के नाम का, पिता भी माँ के साथ मिल गया और उनको भी लोभ आ गया कि राजा से धन मिलेगा, वो भी मुझे मरने के लिए छोड़ गया, तो मैंने उसके नाम का दिया भी तोड़ डाला। तीसरा दिया मेरे बड़े भाई के नाम का। दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता, पर उसने भी मेरे माँ बाप को रोका नहीं, उसको भी लगा माँ बाप को दौलत मिलेगी तो उसमें मेरा भी तो हिस्सा है ना, ऐसे लालची भाई को मैं क्यों याद करूं। चौथा दिया मेरे छोटे भाई का। ऐसे तो वो मुझे बहुत प्यार करता था, पर उस दिन जब माँ बाप मुझे पकड़ के लाए वो कुछ भी नहीं बोला, रोया भी नहीं। ऐसे भाई की ममता क्यों दिल में बसा के रखूं। और पांचवा दिया राजा के नाम का। दुनिया में लोग कहते हैं राजा प्रजा का माता पिता होता है, अपराध माफ कर देता है, पर मेरा राजा तो ऐसा है, मैं तो निरपराध हूं फिर भी मेरी बलि चढ़ाएगा, ऐसे राजा को मैं क्यों याद करूं। मैंने उसका दिया भी बुझा दिया। और ये छठा दिया है भगवान का, जो आज भी मेरा माता पिता है, पिछले जन्म में भी मेरा माता पिता था, आगे भी मेरा माता पिता होगा, मुझे उसी के पास जाना है। तो मैं 15 दिन इसी का ध्यान करूंगा, मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पहनना है, मुझे एकांत चाहिए, मुझे मेरे माता पिता से जी भर के मिलने दो। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए, राजा ने बच्चे को दिल से लगा लिया और राजा ने कहा, बेटा किसने कहा मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा, मैं तो तेरे को ही अपना बेटा बनाऊंगा। और अगले दिन राजा ने घोषणा कर दी कि राजा को बेटा मिल गया है और मैं उसे युवराज घोषित करने जा रहा हूं, तो सारी प्रजा राजधानी में आ जाए और इस फंक्शन को देखे। तो उसके माँ बाप भी आए, देखा बच्चे को युवराज पद पे बिठा दिया। तब बच्चे ने कहा कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, मैंने भगवान को अपना बनाया तो मैं मृत्यु से बच गया, जिए दान मिल गया, राजाई मिल गई, प्रजा का सम्मान मिल गया, और माँ बाप ने भी आकर के बच्चे के आगे सिर झुकाया, उससे माफी मांगी। तो एक भगवान का बनने में सब कुछ मुट्ठी में आ जाता है। तो हमें किस बात का मोह रखना है, तुम संग खाऊं तुम संग खेलूं तुमसे हर संबंध निभाऊं, केवल एक का हिसाब पक्का करना है। मुरली में बाबा कहते हैं 3-5 का हिसाब छोड़ो, एक का हिसाब सरल। तो एक का पाठ पक्का करना है। और फिर है अहंकार, अहंकार को किसमें बदलेंगे। अहंकार होता है देह का अभिमान, देह की प्राप्तियों का अभिमान, देह के संबंधों का अभिमान, और इसकी भेंट में एक होता है स्वमान। स्वमान है आत्मा के गुणों का स्वमान, आत्मा के संबंधों का स्वमान, आत्मा की शक्तियों का स्वमान, और आत्मा को परमात्मा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनका स्वमान। तो हम सबके कितने स्वमान, लिस्ट निकालो तो हर मुरली में कितने स्वमान मिलते हैं। एक एक स्वमान का जब हम मनन करते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। दुनिया में देखो जो लाडले बच्चे होते हैं ना, माँ बाप उन बच्चों के कितने नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ तो हम पिता के इतने लाडले हैं कि हमको इतने नाम मिले हैं, इतने नाम मिले। हर मुरली में कोई ना कोई नया नाम आ जाता है। कभी बाबा राज ऋषि बोलते हैं, कभी रूप बसंत बोलते हैं, कभी फरिश्ता बोलते हैं, कभी संकट मोचन बोलते हैं, कभी दाता, देवता, विधाता, वरदानी, महाज्ञानी, कितने सारे नाम बाबा रोज हम बच्चों को देते हैं। तो ये दे अभिमान को, अहंकार को हम स्वमान में परिवर्तित करते हैं। जब मैं कहें तो हमें कोई ना कोई स्वमान याद आए। मैं कौन हूं? मैं लवलीन आत्मा हूं, बाप की दिल रुबा आत्मा हूं, बाप का दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, बाप के गले का हार हूं, बाप के सिर के ताज की मणि हूं, बाप का राइट हैंड हूं, बाप का साथी हूं, विश्व परिवर्तक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, बाप समान अनादि अविनाशी हूं, सबका शुभ चिंतक हूं। तो एक एक स्वमान को याद करें और उसकी गहराई में उतर जाएं। मैं सबका शुभ चिंतक हूं, शुभ चिंतक मणि। दुनिया में लोग मणियां पहनते हैं, कहते हैं इससे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन हम तो जीती जागती मणि हैं। हमारी दृष्टि पड़ने से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे हम शुभ चिंतक मणि हैं, तो उसके ऊपर हम चिंतन करें। संतुष्ट मणि है, बाबा कहती हैं दुआएं लेना है, दुआएं देना है, तो संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। ऐसे नहीं कि देखो मैं तो अभी संतुष्ट हूं। जब कोई बात आए, जब कोई परिस्थिति आए, तब हम अपनी संतुष्ट मणि की किरणें बिखेरें। जिस परिस्थिति में दूसरे लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, उसमें हम संतुष्ट रह करके दिखाएं, तब कहेंगे कि मणि का प्रकाश अबाध्य है, ये मणि तो हमेशा ही चमकती रहती है। फिर बाबा कहते हैं तुम अनमोल मणि हो। संगम युग का हमारा जीवन कितना अमूल्य, हमारे हर कदम में पदम। दुनिया में जो अमीर लोग हैं, लोग उनकी रोज की कमाई निकालते हैं, भाई इसकी एक घंटे की कमाई 1 लाख है, 10 लाख है, लेकिन हमारे हर कदम में पदम की कमाई इतने अनमोल है। पदम गिनती करो तो गिनती नहीं आती, अनगिनत होता है। बाबा ने कहा था त्रेता के अंत की प्रजा भी वर्तमान के जो अरब खरब पति है उनसे ज्यादा अमीर होगी। तो एक एक स्वमान की गहराई में जाए। मैं राज ऋषि हूं, राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार का राजा हूं, स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का राजा हूं, और साथ में ऋषि भी हूं, सर्वंश त्यागी हूं, देह का भी त्याग। सबसे नजदीक तो देह और देह के संस्कार, तो देह का भी त्याग, देह के पुराने संस्कारों का भी त्याग, ऐसा मैं ऋषि हूं और स्वराज्य अधिकारी हूं, दोनों एक साथ। तो जब हम एक एक स्वमान की गहराई में जाएंगे तो देह अभिमान, देह अहंकार, या जो सांसारिक अहंकार हमारे भीतर, किसी को शारीरिक बल का अहंकार है, पढ़ाई का अहंकार है, रूप का अहंकार है, कईयों को जाति का भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, मैं ऊंची जाति का हूं। थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, यहाँ जाति पाति कुछ नहीं। भक्ति में भी कहते हैं जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का हुई। तो ये जो भी सूक्ष्म अहंकार हमारे भीतर हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। कभी बैठ करके हम स्वमानों की लिस्ट निकालें और अपनी लिस्ट निकालें और रोज एक स्वमान पे 10 लाइन लिखें या एक पेज लिखें, इसका मीनिंग क्या है? जब हम स्वमान को सुनते हैं तो सुनने में शब्द अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पे मनन करके उसकी गहराई में जाके उसको लिखते हैं और उसका स्वरूप बनते हैं, तब अतिंद्रिय सुख मिलता है कि मेरा कितना सुंदर नाम है और भगवान ने मुझे ये नाम दिया है और कल्प कल्प भगवान मुझे ये नाम देता रहेगा। जैसे पांडवों में अर्जुन के बहुत नाम है, तो वो किसकी यादगार है? वो हमारी यादगार है। भगवान ने हम सबके कितने नाम रखे, तो बार बार हम अपने स्वमानों का स्मरण करें। और एक विकार है ईर्ष्या, ऐसी तो बहुत सारी है, नफरत भी है, बदले की भावना भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम शरीक होता है उससे ईर्ष्या हो जाती है, दूर वाले से नहीं होती है। अगर किसी ने अमेरिका में लंदन में कार खरीदी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, बंबई में कलकत्ते में खरीदी हमें क्या फर्क पड़ेगा, किसी ने बड़ा मकान बनाया हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे बाजू वाले का मकान मेरे से सुंदर बन गया तब फर्क पड़ता है। हम शरीक हो, साथी हो, जान पहचान वाला हो, नजदीकी हो, और वो किसी भी बात में हमसे आगे जाए, स्थूल में या सूक्ष्म प्राप्तियों में आगे जाए, तब ईर्ष्या होती है कि देखो मेरे जैसा ही है पर मेरे से आगे क्यों, ज्ञान में आगे जाए, भाषण में आगे जाए या किसी और चीज में आगे जाए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मान लीजिए आपका कोई साथी है, सहयोगी है, कोई आपके बराबर का है, आपसे आगे जा रहा है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि इसको निमित्त बनाने वाला को, कोई भी आत्मा संगम युग में कोई भी सेवा कर रही है, कहीं भी सेवा कर रही है, उसको निमित्त कौन बनाता है? हम कहेंगे जो निमित्त है उन्होंने निमित्त बनाया, पर जो निमित्त है उनको भी निमित्त किसने बनाया? करण करावन हार तो एक ही है ना। तो अगर करण करावन हार इस आत्मा को निमित्त बना रहा है तो जरूर वो इसके जन्मों की कहानी जानता है, इसके कर्मों की कहानी जानता है, इसकी योग्यता को जानता है, और इसलिए उसने इसको निमित्त बनाया। तो उसमें मुझे क्यों इतराज है? क्या मुझे भगवान का डिसीजन पसंद नहीं है? जो भगवान को पसंद वो मुझे पसंद। हम सब आत्माओं का बैकबोन बाबा है, कोई कुछ भी कर रहा है बाबा की शक्ति से कर रहा है। आत्मा करणहार है, बाबा करावनहार है। और जब हम इंद्रियों से कर्म करते हैं तब आत्मा करावनहार है और इंद्रियां करणहार। तो अगर हम ये मंत्र पक्का कर लें, जैसे हमारी मातेश्वरी जी का मंत्र था हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तो करण करावनहार करवा रहा है, हम सब आत्माएं कर रही हैं। भक्ति में लोग कहते हैं पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। बाबा ने कहा पत्ता पत्ता पेड़ का वो तो मर्जी से नहीं हिलता, लेकिन इस कल्प वृक्ष का जो पत्ता है और उसमें भी हम ब्राह्मण पत्ते हैं, वो पत्ते बाबा की श्रीमत से चल रही हैं, चलाने वाला चला रहा है, तो राजी हैं हम तेरी रजा में। तू जिसको जैसे चला रहा है हम भी उसमें आनंदित। तो बाबा को सामने लाएंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर किसी में कोई गुण है तो मैं उससे प्रेरणा लूं कि मैं भी इस गुण को धारण करूं। ईर्ष्या करेंगे तो क्या फायदा होगा? सामने वाले में तो वो गुण है वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं ईर्ष्या करूं तो मेरे जो गुण है वो भी खलास हो जाएंगे, नुकसान तो मेरा होगा, उसका तो मेरी ईर्ष्या कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं प्रेरणा लूं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अच्छा काम कर रहा है तो मुझे उससे सीखना है, प्रेरित होना है, पर ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या का एक कारण होता है आलस्य और अलबेलापन। मतलब हम आलसी अमल बेले, हम कुछ करना नहीं चाहते और सामने वाला कुछ कर रहा है, तो फिर दुर्भावना आ जाती। तो हम चेकिंग करें कि मैं कहां अपना समय व्यर्थ गंवा रहा हूं, कहीं मैं आलसी तो नहीं हूं, कहीं मैं लापरवाह तो नहीं हूं, मैं भी चुस्त बनूं, फुर्त बनूं, मैं भी समय का एक एक पल सदुपयोग करूं। तो जब हम अपने चार्ट पे ध्यान देंगे तो फिर हमें सामने वाले से कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो इस विकार का भी हम परिवर्तन करें, प्रेरित हो जाएं, उससे भी आगे बढ़ के दिखाएं, लेकिन किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना, किसी को उठा के आगे बढ़ना, किसी को पीछे खींच के आगे नहीं बढ़ना, किसी को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ना, क्योंकि दूसरे आगे बढ़ेंगे उसमें मेरा भी आगे बढ़ना है, और दूसरे आगे बढ़ेंगे तो उसमें विश्व का कल्याण होगा। किसी के आगे बढ़ने से दुनिया का कल्याण होता है, किसी के पीछे रहने से दुनिया का भी अकल्याण होता है। तुम तो विश्व कल्याणकारी है ना, तो विश्व का एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो जो भी विकार हैं, बाल बच्चे बहुत हैं आगे, उन सब बाल बच्चों को भी हम अपना सहयोगी बनाएं, परिवर्तन करें, दमन नहीं करें। दमन की हुई चीज कई गुणा शक्ति से ऊपर उठती है, वापस लौटती है। दबाओ नहीं, ज्ञान से उसको संवारो, उसको बदलो। और हम सब का मूल संस्कार तो देवताई संस्कार है, तो बार बार जब हम ये याद करेंगे, बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, हम सो हम, मैं मूल रूप में तो देवता ही। तो बार बार उस रूप को याद करेंगे तो ये मध्यकाल के जो संस्कार हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति से समृद्धि आती है। तो अपनी स्मृति को बार बार दोहराएंगे तो हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे, और समर्थ आत्मा के आगे ये विकार हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि मेरे मालिक मुझे कोई सेवा बताओ। तो हम इन सबको अपना दास बना के, गुलाम बना के इनसे सेवा लेंगे। ओम शांति।